ह्यूम और वह गोपनीय रिपोर्ट सुरक्षा वाल्व की इस परिकल्पना को ऐतिहासिक साक्ष्य बना देने में 7 खंडों वाली उस गोपनीय रिपोर्ट की निर्णायक भूमिका रही, जिसके बारे में ह्यूम का कहना है कि 1878 की गर्मियों में शिमला में उन्होंने इसे पढ़ा था और इसे पढ़ने के बाद इन्हें इसका पक्का यकीन हो गया कि भारत में असंतोष उबल रहा है और एक बड़ी साजिश रची जा रही है। निचले तबके के लोग ब्रिटिश शासन को हिंसा के द्वारा उखाड़ फेंकने वाले हैं। इसके पहले कि हम इन 7 खंडों के रहस्य की छानबीन करें, यह जान लेना बेहतर होगा कि इस रिपोर्ट की चर्चा सबसे पहले कैसे शुरू हुई और बाद में यह बात कैसे आगे बढ़ी। वेडरबर्न ने एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी जो 1913 में प्रकाशित हुई। सबसे पहले इसी जीवनी में 7 खंडों की इस गोपनीय रिपोर्ट की चर्चा की गई थी। ह्यूम के पास कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जो दस्तावेज थे, उन्हीं में वेडरबर्न को एक ऐसा दस्तावेज मिला जिस पर कोई तारीख नहीं पड़ी थी। वेडरबर्न ने ह्यूम की जीवनी में इस दस्तावेज का विस्तार से हवाला दिया है। यह दस्तावेज क्या था और वेडरबर्न ने क्या लिखा था, यह रहस्य मैं आगे खोलूंगा। अभी मैं वेडरबर्न के लिखे उन अंशों को ही दे रहा हूं जिनका हवाला उनके बाद के कई लेखकों ने अपने लेखों में दिया। लाला लाजपत राय के अनुसार, इस तथ्य के बावजूद कि ह्यूम आज़ादी के प्रेमी थे, वह सबसे पहले तो एक अंग्रेज देशभक्त ही थे। जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश शासन पर एक गंभीर विपत्ति आने वाली है, तो उन्होंने असंतोष के सुरक्षित निकास के लिए एक सुरक्षा वाल्व बनाने का फैसला किया। अपनी इस बात को साबित करने के लिए लाला लाजपत राय ने ह्यूम के दस्तावेज से एक लंबा अंश उद्धृत किया जो वेडरबर्न की किताब के पृष्ठ 80-81 पर छपा था। ह्यूम के दस्तावेज के इस अंश के साथ वेडरबर्न ने अपनी टिप्पणियां भी दी थीं। चूंकि बाद के सभी लेखकों ने इस अंश को उद्धृत किया है या इसका हवाला दिया है, इसलिए यह जरूरी है कि इस अंश को हम यहाँ फिर से उद्धृत करें। ह्यूम ने लिखा, मुझे इस रिपोर्ट के कई बड़े खंड दिखाए गए जिनमें छोटी बड़ी ढेर सारी प्रविष्टियां थीं। कई तरह की सूचनाओं के आधार पर ये प्रविष्टियां दर्ज की गई थीं। ये या तो इन सूचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद थे या अंग्रेजी में उन्हें संक्षेप में लिख दिया गया था। इन सभी सूचनाओं को जिलेवार क्रमबद्ध किया गया था। कहा जाता है कि उस समय 30,000 से भी ज़्यादा मुखबिरों द्वारा भेजी गई सूचनाओं के आधार पर ये असंख्य प्रविष्टियाँ इस विस्तृत रिपोर्ट में की गई थी। उन्होंने ह्यूम ने लिखा है कि इस रिपोर्ट के ये खंड सिर्फ एक हफ्ते तक उनके कब्जे में रहे। इसमें की गई ज़्यादातर प्रविष्टियां समाज के निचले तबके के बीच होने वाली बातचीत के आधार पर तैयार की गई बताई जाती है और इंसानी सारी प्रविष्टियों से यह पता चलता है कि मौजूदा हालात से इन गरीब लोगों में निराशा घर कर गई है और उन्हें लगता है कि भूख उन्हें मार डालेगी। अब वे कुछ करना चाहते हैं, एकजुट होना चाहते हैं और जो कुछ वे करना चाहते हैं वह है हिंसक संघर्ष। पढ़े लिखे लोगों का एक छोटा वर्ग भी इन लोगों के साथ है। यह शिक्षित तबका तंग आकर शायद अनुचित रूप से सरकार के विरुद्ध है। यह शिक्षित तबका भी आंदोलन में शामिल होगा, उसे नेतृत्व प्रदान करेगा और असंतोष के विस्फोट को राष्ट्रीय विद्रोह के रास्ते पर मोड़ देगा। लाला लाजपत राय ने हालांकि इस किताब से उदाहरण तो दिए, 7 खंडों की इस रिपोर्ट के चरित्र और उत्पत्ति वगैरह के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा था, लेकिन बहुत जल्दी ही इस रिपोर्ट के बारे में तरह तरह की बातें सामने आने लगीं। 1933 में गुरमुख निहाल सिंह ने इन 7 खंडों को सरकारी रिपोर्ट बताया तो दूसरी तरफ एंड्रूज और मुखर्जी ने कहा कि ये CID द्वारा तैयार की गई गोपनीय रिपोर्ट थी और ह्यूम को ये रिपोर्टें उनकी सरकारी हैसियत के तहत मिली थीं। लेकिन रजनी पामदत्त इन सब लोगों से भी एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने लाला लाजपत राय द्वारा वेडरबर्न की किताब से उद्धृत अंशों के पेश करते हुए कहा, ह्यूम को उनकी सरकारी हैसियत के तहत पुलिस की ये गोपनीय रिपोर्टें हासिल हुई थीं। इन लोगों के इस कपोल कल्पित साक्ष्य को बाद के इतिहासकारों ने, जिनमें RC मजूमदार और ताराचंद जैसे इतिहासकार भी शामिल हैं, एक ऐतिहासिक तथ्य मान लिया। ह्यूम के इन दस्तावेजों को इतने पक्के तौर पर सरकारी दस्तावेज माना जाने लगा कि 1950 के दशक में कई इतिहासकारों और इतिहास के कई शोधकर्ताओं ने, जिनमें आज के कई इतिहासकार भी शामिल हैं, राष्ट्रीय अभिलेखागार में इन दस्तावेजों की खोज में अपना काफ़ी वक्त और मेहनत बर्बाद की। और जब इस खोजबीन में उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने यह मानकर तसल्ली कर ली कि 1947 में भारत छोड़कर जाने से पहले अंग्रेजों ने इन दस्तावेजों को नष्ट कर दिया होगा। अगर इन इतिहासकारों ने जरा भी सूझबूझ से काम लिया होता और इस कपोल कल्पना की छानबीन जरा सावधानी से की होती तो शायद उन्हें बेवकूफ़ न बनना पड़ता। डफरिन और रिपन के निजी दस्तावेजों के सामने आने के पहले भी दो प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध थे जिनमें इस कपोल कल्पना की जांच आसानी से की जा सकती थी। पहला साक्ष्य तो हमें 1870 के दशक की भारत सरकार की कार्यप्रणाली की छानबीन करने से ही मिल जाता है। 1878 में ह्यूम राजस्व, कृषि और वाणिज्य विभाग के सचिव थे। इन विभागों के सचिव की पहुंच गृह विभाग की फाइलों या सीआईडी रिपोर्टों तक भला कैसे हो सकती थी? फिर उस समय ह्यूम शिमला में नियुक्त थे, जबकि गृह विभाग की फाइलें दिल्ली में रखी जाती थीं और उन्हें शिमला भेजा ही नहीं जाता था। और फिर 30,000 मुखबिर कहाँ से आए? उस समय खुफिया विभाग में कुछ 100 से ज़्यादा कर्मचारी नहीं थे। और जैसा कि लाला लाजपत राय ने लिखा कि हिंसा भड़कने की आशंका के कारण कांग्रेस की स्थापना की गई, तो ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए 7 साल तक इंतजार क्यों किया? सवाल उठता है कि ये रिपोर्टें अगर सरकारी नहीं थीं तो फिर थीं क्या? वेडरबर्न की किताब में तलाशें तो इसका सुराग मिल जाएगा। दरअसल अगर किसी लेखक ने सिर्फ इस किताब से उद्धृत अंशों को ही आधार न मानकर बनाकर पूरी किताब उल्टी पलटी होती तो उसे वेडरबर्न की किताब में उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्य मिल गया होता। लाजपत राय, रजनी पामदत्त और दूसरे अन्य लोगों ने जिन अंशों को उद्धृत किया है वे वेडरबर्न की किताब के पृष्ठ 80-81 पर छपे हैं। इनसे दो पृष्ठ पहले यानी 78-80 पर और एक पृष्ठ आगे यानी 82-83 पर वेडरबर्न ने बताया है कि ये दस्तावेज क्या थे और इन्हें किसने ह्यूम को दिया था। विभिन्न लेखकों ने जिन अंशों को उद्धृत किया है वे अंश वेडरबर्न की किताब के भारतीय धार्मिक नेता शीर्षक से छपे अध्याय के हैं। इस अध्याय की शुरुआत में ही वेडरबर्न ने लिखा है कि आसन्न खतरे की एक चेतावनी ह्यूम को एक अति विशेष स्रोत से मिली। यह स्रोत था धार्मिक नेताओं का जो कि भारत के सभी हिस्सों में बसे लोगों के धार्मिक जीवन को नियंत्रित करते थे और उनका नेतृत्व करते थे।